ಚಕ್ಷೋರುಣಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತಿಶಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನ ಅಪರಾಧ ಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿ ತರಂಗ ಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ವಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರ್ವಿಂದ. ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಪರಮಾರಾಧ್ಯತಮ ಶಿಷ್ಯ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಶಿಷ್ಯಮದ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಶವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಚರಣ ಕಮಲೋ ಕೋಟಿ ಷಷ್ಠ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ವೈಷ್ಣವ ಮಠಾಯ ಅರ್ಥನ್ಯ ಬಹು ದಿನ ಸೇ ಸೋಚ ರಾ ಥಾ ಕಿ ಮೈ ಹರಿನಗರ ಮೇ ಆಊಂ ಕಿಂತು ನಹೀಂ ಆ ಸಕಾ. ಬೀಚ ಬೀಚ ಮೇ ಮೈ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಗಯಾ ವಹಾಂ ಸೇ ಆನೆ ಕೆ ಸಮಯ ಜಾತೆ ಸಮಯ ಹರಿನಗರ ವಾಲೆ ಭಕ್ತೋ ನೇ ಬಹುತ ಆಗ್ರಹ ಕಿಯಾ ತೋ ಮೈನೆ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಮೈ ಜರೂರ್ ಆಊಂಗಾ ಕಿಂತು ವಾದಾ ನಹೀಂ ಪೂರಾ ಕರ ಸಕಾ. ಇಸ್ ಬಾರ್ ಮೈನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಹಮೇ ಜಾನಾ ಹೀ ಹೈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕರ್ಕೆ ರಾಧಾಷ್ಟಮಿ ಸೇ ಪಹಲೆ ಹೀ ಹಮ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಔರ್ ದೋ ಚಾರ್ ದಿನ ರಹೆಂಗೆ. ಪಹಲೆ ಮಾನಸ್ ನಗರ ಮೇ ಮಾನಸ್ ಕ್ಯಾ ನಾಮ ಮಾನಸರೋವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇ ದೋ ತಿನ್ ದಿನೋ ತಕ್ ರಹೂಂಗಾ ಔರ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಹರಿ ಕಥಾ ಹೋಗಿ ಔರ್ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಹರಿನಗರ ಮೇ ಆಊಂಗಾ. ಕಿಂತು ವಹಾಂ ಪರ್ ಹಮಾರೆ ಕಶ್ಯಪ್ ಜಿ ಕಿ ತಬಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಉನ್ಕೆ ಘರ್ ವಾಲೋಂಕಿ ತಬಿಯತ್ ಖರಾಬ್ ಹೋ ಗಯಿ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹೀಂ ಸೇ ಆರಂಭ ಕಿಯಾ. ಮಾನವ ಜೀವನ ಕಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೋಯಿ ಕುಛ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಸುಖ ಔರ್ ಶಾಂತಿ ಸಭಿ ಚಾಹತೆ, ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಐಸಾ ಜಗತ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ಭೀ ಪ್ರಾಣಿ ನಹೀಂ ಜೋ ಸುಖ ಔರ್ ಶಾಂತಿ ನಹೀಂ ಜಾನ. ಜಬ್ ಸೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಯಿ ಹೈ ತಭಿ ಸೇ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಚೇಷ್ಟಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಭೀ ಚಲ್ತಿ ರಹೇಗಿ. ಇಸ್ಮೇ ಕೋಯಿ ಕೋಯಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ್ ಶಾಂತಿ ಔರ್ ಸುಖ ಪಾಕರ್ ಜೀವನ್ ಕೋ ಕೃತಾರ್ಥ ಕರ್ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಸೇ ಸದಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚಲಾ ಜಾಯೆಗಾ. ಔರ್ ಬಾಕಿ ಲೋಗ್ ಜೋ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ನಹೀಂ ಚಲೇಂಗೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಸಾಧು ಸಂತೋ ಕಿ ಬಾತ್ ನಹೀಂ ಸುನೆಂಗೆ, ವೆ ಲಾಖ ಚೇಷ್ಟಾ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಭಿ ನ ತೋ ಉನ್ಹೇ ಶಾಂತಿ ಆಯೇಗಿ ನ ಸುಖಿ ಭೋಗ ಕೋ ಸಕ್ತೆ. ಆಪ್ ಲೋಗ್ ತೋ ದೇಖ್ ಹಿ ರಹೇ ಹೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿ ಕಿತ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಹುಯಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಿ ಕಿತ್ನಿ ಉನ್ನತಿ ಹುಯಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸೇ ಲೇಕರ್ ಸಭಿ ಕುಛ್ ಕಿ ಬಡಿ ಉನ್ನತಿ ಹುಯಿ. ಕಿಂತು ಮೈ ಸಮಜ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಆಜ್ ಸೇ 50 ವರ್ಷ ಪಹಲೆ ಲೋಗ್ ಜೋ ಸುಖಿ ಥೇ ಆಜ್ ನಹೀಂ ಹೈ. ಲೋಗೋ ಮೇ ಛಲ್ ಛಂದ, ಲೋಗೋ ಮೇ ದುಷ್ಟತಾ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಬೇಮಾನಿ ಕ್ರಮಶಃ ಬಡ ರೀ. जिस समय त्रेता युग से द्वापर युग आया और फिर द्वापर से कलयुग आया, ये दिन द्वापर से कलयुग आया, एक दिन पहले दो परिवारों में कुछ लड़ाई हो गई। लड़ाई इसलिए ठन गई कि एक परिवार के लड़के के साथ दूसरे परिवार की लड़की के साथ में शादी हुई। शादी होने के बाद में लड़की पक्ष ने कुछ जमीन वर पक्ष को दिया दान में, दहेज में। तो उसने उस दिन तो ले लिया और उसी दिन उसने हल चलाया, उसमें एक हड़िया भरी सोने की या सरफी की हड़िया मिली। वो सोने की या सरफी से भरी हुई हड़िया को लेकर अपने बेटे की जहाँ ससुराल थी, जिन्होंने दहेज दिया था, उनके पास में गया और बोला, हमको तो तुमने जमीन दान दी कि इसमें असरफी भरी हुई बड़ी हड़िया मिली, इस पर हमारा अधिकार नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं करता, जमीन लूंगा। उसने कहा कि मैं जमीन का पूरा सत्व, इसमें जो कुछ भी होने वाला मिलने वाला जो कुछ है, मैंने सब कुछ निस्वत्व दान किया है। कहते नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता, जय जमीन वो नहीं लूंगा। दोनों में बहुत कुछ हुआ किंतु नहीं लिया उसने, और उसने भी देना नहीं छोड़ा। किसी न्याय वाले के पास में गए, जज के पास में गए, उन्होंने फरियाद की, उन्होंने दोनों का पक्ष सुना, कहा जैसे अब आज मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं कल कुछ निर्णय लूँगा, सोच विचार कर जैसा उचित होगा। और दूसरे दिन कलयुग आ गया और वो जब निर्णय करने बैठा, अब दोनों अप्लीकेशन लेकर के पहुंचे। पहला कहता है कि ये हड़िया मेरी है जिसके खेत में निकला, मैंने तो खेत दान किया था, हड़िया नहीं, सोने वाली असरफी। और दूसरा कहता है जो कुछ जमीन जब दे दिया तो वो हड़िया भी मेरी है, मेरी असरफी है। एक दिन में बदल गया, कैसा स्वार्थ, यही कलयुग है। किसी को चैन से नहीं बैठने देगा, लोगों के अंदर में बेईमानी आ जाती है, आत्मज्ञान भूल जाता है, सोने अर्थ में उनकी बुद्धि लग जाती है। इसी से मैं सुखी हूंगा किंतु आज तक कोई नहीं हुआ, सतयुग से लेकर के अब तक, और फिर भी हम इस चीज का पीछा नहीं छोड़ रहे। भगवान का भजन करने से सुखी होंगे, शास्त्र पुकार पुकार करके कह रहे हैं, नहीं सुखी हो सकते, तभी हम लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। यहाँ तक कि गृहस्थों की तो बात करें, त्यागी लोग भी, नारद जी का देखो, विश्वामित्र जी को देखो और लोगों को देखो, त्यागी लोग भी आजकल भी देखो, लाखों में से कोई एक व्यक्ति साधु और बाकी सब ऐसे उसी के पीछे पड़े हुए हैं जिसके लिए गृहस्थ लोग, कोई सुखी नहीं, कौन सुखी रह सकता है जो इस जगत के श्रष्टा हैं, स्थिति करने वाले प्रभु हैं, बड़े करुणामय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, यदि कोई उनका शरणागत हो जाए, अनकंडीशनल सरेंडर सचमुच में कर दे। जैसे द्रौपदी जी लज्जा रखने के लिए भगवान को पुकार रही हैं और भगवान नहीं आ रहे, आंचल को अपने दांतों सले अभी दबा रखा है, और जगह से तो हार गई, किसी ने भीष्म पितामह द्रोण कर्ण इत्यादि पांचों पांडव लोग, कोई नहीं सहायता कर सकता, और अपने बल से अपनी नहीं सहायता कर सकता। जब दोनों हाथों को उठा दिया, हे गोविंद राकुशर, जब ऐसा कहा, एक क्षण भी नहीं लगा, प्रभु ने उनकी रक्षा। इतने शास्त्रों में उदाहरण है तो भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते और इसीलिए सुखी नहीं हो पाते। विशेष करके कलयुग में तो ये बतलाया जी अच्छा अच्छा कुछ मत करो, इतना भी ना हो, बल्कि उठते बैठते जागते सोते छींकते हुए भी फिसलते हुए भी जैसे तैसे भगवान नाम करो। और यदि यह नाम समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हो तो बात ही क्या। मधुर मधुर में तत् मंगलम मंगलानाम सकल अनिगवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृत परिगीतम श्रद्धया हे लयावा भृगुवर नरमात्रम तारी। जिस प्रकार भगवान का नाम मधुर से भी मधुर, अमृत से भी अधिक मधुर और समस्त चिन्मय पदार्थों का भी वो चिन्मय है, वंशा कल्पतरु है, जो कुछ भी कहेंगे वो कर देगा यदि वैसा नाम लिया जाए। यहां तक कि गोलोक वृंदावन का प्रेम भी दिला देगा, संसार में धन संपत्ति की तो बात ही क्या, जरूर दिला देगा। यदि इस नाम को कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो बात ही क्या, बिना श्रद्धा भी यदि करे तो संसार से उसका उद्धार कर देता है। यदि आग में हम हाथ जानबूझकर कर देते हैं तो भी जलाएगी, और यदि न समझें एक बच्चा अनबूझ अज्ञानी और नहीं जान करके हाथ उधर में पड़ गया गलती से भी तो वो जलाएगी आग। पानी में आप जाएंगे इच्छा नहीं करने पर भी आपको भिजाएगा, तो भगवान नाम उसे भी तो सामर्थ्यशाली है, वो तो जरूर अपना फल देगा। तब थोड़ा सा ये है यदि सांसारिक आसक्ति रही, कोई सांसारिक कामना हुई तो उसके फल में विलंब हो सकता है और सांसारिक फलों को देकर के वो हट जाए। इसलिए घर में रहें, जहां भी रहें, जिस रूप में रहें, त्यागी हों, सुख और शांति के लिए भगवान नाम के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम भी दो प्रकार का, एक नाम कहीं से सुन लिया, माइक से सुन लिया या ग्रंथों में लिखा है वहां से सुन लिया, वो उतना फलदायक नहीं होगा, वो उतना फल नहीं देगा, प्रेम नहीं देगा, सांसारिक चीजों को भी बहुत मुश्किल से देगा। तो जो नाम पुष्ट है, किसी ने साधन कर उसकी उपलब्धि कर और तब जब वो लिया जाता है नाम, तब उस नाम की शक्ति सामर्थ्य उसमें होती है और वो संसार से उद्धार कर देता है। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि को नाम दिया, वो राम राम नहीं कर सका, अच्छा उल्टा ही करो, उनका उल्टा हुआ किया हुआ नाम जगत में उनको सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दिया, नाम का फल उनको मिल गया। और हम लोग सीधा भी करते हैं तो नहीं, इसलिए जिन्होंने साधन भजन किया है और साधन भजन करके नाम की महिमा की उपलब्धि की है, और वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को नाम दिया, देखो वो कैसे हो गए, वो उस गुरु परंपरा में आए, यदि गुरु सिद्ध होगा तो हो जाएगा, अन्यथा लाख चेष्टा करो नहीं। इसलिए गुरु दो प्रकार के हैं, एक भागवत परंपरा और एक शिष्य परंपरा या गुरु परंपरा। भागवत परंपरा सिद्धों की है और गुरु परंपरा शिष्य परंपरा, उद्देश्य तो दोनों का एक है, किंतु हो सकता है कि गुरु सिद्ध गुरु का शिष्य हो किंतु अपने गुरु का अनुसरण नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, साधन भजन नहीं किया, उसको सिद्धि नहीं हुई और संसारिकता में बोल रह गया, अब उसका शिष्य होगा तो वो कैसा होगा, नहीं सिद्धि होगी। इसलिए ऐसा गुरु चाहिए, बिना गुरु के बिन गुरु भवन धि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो तभी नहीं होगा, साधारण होगी तो बात क्या। इसलिए शास्त्रों में ये सब चीजें कही गई, विशेष करके साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कर लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, साधु संग बिना साधु संग के ये कभी भी भजन नहीं हो सकता। भजन का मूल ही है साधु संग। साधु माने क्या? परीक्षित महाराज जी के दरबार में उनकी सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उनके दीक्षित शिष्य कितने उसमें थे, आदमी उसमें कितने थे? 88,000 तो केवल सन्यासी साधु थे, और लोग तो अधिक थे, किंतु उसमें सुखदेव गोस्वामी जी का दीक्षित शिष्य कौन था? था कोई? कोई भी नहीं था। तो उनका कल्याण की हुआ कि नहीं? सबका कल्याण हुआ, क्योंकि साधु सबल निवृत्त तरसई उपगीयमान बहु सदा सोत्र मनोभिराम कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्येत बिना पशुना। जिनको कोई कामना वासना नहीं है, कोई भी संसारी कामना वासना, और प्रेम भक्ति उनके हृदय में है, निवृत्त तरसई उपगीयमाना, उपगीयमाना अपने गुरु से उन्होंने श्रवण की हो, गुरु की सेवा की हो, आप पुनः उनके मुख से ये निकल रहे हैं सिद्ध नाम सिद्ध हरि कथा, तो वो संसारिक लोगों के लिए महाभौषधि है, भौरों की औषधि है, समस्त क्लेशों को दूर करने वाली वो हरि कथा है। यदि उसको कोई नहीं सुनता तो उसके समान आत्मघाती और कोई नहीं है। वहां पर आप लोग सुनिए, छोड़ कोई समस्या क्या है, हमको वही अच्छा है, यहाँ पर होने से हमको गड़बड़ हो, आप लोग चुपचाप। उस समय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या ये ऐलान करेंगे कि हमारे अतिरिक्त और कोई किसी के पास में सुनने मत जाना, कहेंगे वो? कभी कहा किसी ने? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जी हमारे पास में अब तुम सुन ले, आप किसी के पास में मत जाना, किसी भी हमारे आचार्य जी ने? ऐसा मत सोच, जहां भी साधु सुन रहे हमारे जी गोस्वामी इत्यादि के पास में श्यामानंद नरोत्तम ठाकुर शिवास आदि कितने आए, राय रामानंद ने लाखों लोगों को उपदेश दिया अपने दीक्षित क्षेत्र को ही, महाप्रभु ने जिनको जिनको भेजा वो सभी गए उनके पास में, महाप्रभु अपने उनको न दे करके उनके पास में हरि कथा के लिए क्यों भेजा, और उन्होंने ये कहा जी आप मेरे गुरु हैं और दूसरों के पास नहीं जाए, ऐसा नहीं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु से भी जो श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु बहुत श्रेष्ठ हो सकते, बहुत लाखों उदार, इसलिए उसको कहा गया भागवत परंपरा। भागवत परंपरा हम लोगों को भागवत परंपरा में हरि कथा सुनना होगा। जो गुरु ये कहता है कि नहीं हमारे अतिरिक्त तर्कों में मत जाओ, तो वो गुरु नहीं बनियागिरी वो करता है, बनिया है, भोगी है, वो सोचता है कि हमारा ये भोग दूसरे के पास में चला जाएगा, सीधी सीधी बात। इसलिए जहां हरि कथा हो रही है, जहां भी हो, वो है ना सतं प्रसंगम बम विरज संविदो भवंतरित कर्णर साजन कथा तज्जोसनातयासु अपवर्ग वर्तमनि सदारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। या ना गुरु के लिए कहा नहीं, सतां प्रसंगम विरज साधुओं के संग में ऐसे निष्कपट भजन प्रिय भजन में सिद्ध महात्माओं के संग में जाओ हरि कथा का श्रवण, इसे क्रमशः तुम्हारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, तुमको साधन भक्ति आएगी, साधन भक्ति इसके आधार क्रमशः भाव भक्ति और अंत में प्रेमा भक्ति आएगी, कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मेल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। विशेष करके प्रेममयी जो भक्ति है इसके लिए कहा कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियतां कुतोपि यदि लभ्यते। कृष्ण भक्ति में सारा वो यदि ऐसी मति कहीं मिलती है, ऐसा कोई संत मिलता है जिसकी मति बुद्धि चित्त वृत्ति कृष्ण भक्ति में रंग गई है, रसमयी हो गई है, ऐसे साधुओं का संग कहीं हो तो सिर दे करके भी ले आओ। कोई गुरु पतित हो सकता है किंतु भागवत पतित नहीं होंगे, बात ठीक है कि गलत है? सबसे बड़ा साधु कौन है? श्रीमद् भागवत, और उसका आचरण करने वाला जो संत है वो भागवत है। जो भागवत का आचरण नहीं करता ये श्रीमद् भागवत का वो साधु है ही नहीं है। साधु भागवत वेद पुराण उपनिषद एक स्वर से कहते हैं, जहां साधु संत है वहीं पर भक्ति विराजमान होती है। उन साधु संतों में से कोई एक बिरला सद्गुरु होता है, साधु के सब लक्षण दिए गए हैं। इसलिए हम लोग ये विचार करके अपने जीवन को किसी को अर्पण करेंगे, और यदि ऐसा नहीं होता उसे भक्ति नहीं मिलेगी, लौकिकता मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सांसारिक चीजें मिल जाएंगी, भक्ति नहीं मिलेगी। विशेष करके एक और बात है, कल से हम लोग विशेष रूप में हरि कथा कहेंगे सवेरे शाम, आज मैं आया हूँ इसलिए संक्षेप में कह रहा हूँ, अभी हमारे ब्रह्मचारी लोग कुछ कहेंगे, कीर्तन भी होगा, और जो कीर्तन करने वाले हैं वो कहाँ गई सब? दो लड़कियाँ पूड़ी बना रही हैं, रसोई बना रही हैं, वाह। तो एक बात ये जो महामंत्र है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने विश्व भर में प्रचार किया, ये किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ये कहां से आया? वेदों में है, वेदों माने कलिसंतर उपनिषद में है। अच्छा, इनके वक्ता कौन है? स्वयं नारायण है, नारायण या कृष्ण कहो, स्वयं कृष्ण है। वेदों इनके मुख से निकले, इनके नाक के सांस से निकले, इसको लाखों लोगों ने सिद्ध किया, और ये सिद्ध मंत्र है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए, वो स्वयं भगवान राधा और कृष्ण मिली, उन्होंने उस पर अपना ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी, और उनके जितने भी भक्त हैं इसको मोहर लगाए। इसलिए इसके उच्चारण से और यह मंत्र यदि गुरु के द्वारा मिल जाए तो उसे जैसे सहज रूप में सिद्धि होगी और दूसरे मंत्रों से नहीं। इसलिए हम लोग हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विशेष करके इस महामंत्र का कीर्तन होता है, इसी का जप होता है, उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं अधिक, और भी कुछ कीर्तन भी बहुत प्रकार के हैं, नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन। जैसे जसोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना गोपी प्राण धन मदन मोहन मनोहर काली दमन विधान, उसमें और आगे बढ़ जाएंगे, जामुन टसचर गोपी बसनहर रास रसिक कृपा, ये सब लीला के ये नाम से अभिन्न है किंतु तो भी होने पर भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इसकी महिमा कुछ बिरले है। क्यों? इसमें जितने भी नाम हैं वो सब संबोधनात्मक हैं। संबोधन किसको कहते हैं? उस लीला में तो कीर्तन कर रहे हैं उनके नामों का, और इसमें हे हरे हे कृष्ण, हे हरे मैने हे राधिके, हे कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधे हे राधे, हे राम हे हरे, हे राम। राम माने भी क्या? राधा रमण राम। जीव रमण करने सीता रमण नहीं, राधा रमण नाम से ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसी नाम का अवलंबन किया। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे भी कह सकते थे, किंतु इसमें जो रस है, इसमें जो सिद्धि है, वो राधे कृष्ण नाम से नहीं होगी, होगी उससे कुछ हद तक होगी, किंतु जिस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, इस नाम को लिया, इसमें जितना रस है, इसमें ब्रज का जितना रस है, सब उसके अंदर में अंतर नहीं। कौन सा रस? सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सबसे अधिक मधुर रस। मधुर रस में भी ललिता जी नहीं कहेंगे हे राधे हे कृष्ण, कौन करेगा? मंजरियां करें, रूप मंजरी करें और दूसरी करें। इसलिए ये जो नाम है, इसमें इतना रस भरा पड़ा है, ये साधारण आदमी समझ नहीं सकता, उनकी बुद्धि वहां नहीं जा सकती। ये कौन देगा मंत्र? ऐसा यदि सिद्ध कोई महात्मा हो, जानने वाला हो, तब तो देगा, नहीं तो क्या देगा? कहते जाओ दे दिया हरे कृष्ण, दो दिन करके फिर छोड़ दे, 16 माला करना, इसके बाद में वो देखने नहीं जाएंगे, पूछने नहीं जाएंगे। नाम भी किया, माला उपवास फड़ी फूटी में टंगी है, और गीता का संसार भी हो गया, ये देखने के लिए शिष्य के पास में नहीं जाएंगे, इससे क्या लाभ होगा? इसलिए हमारे शास्त्र भरने चाहिए। अब इसके बदले यदि हम कोई दूसरा कीर्तन करते हैं जो महात्माओं के द्वारा, और सिद्ध मंत्र नहीं है, दूसरा यदि कोई कीर्तन करते हैं, जैसे एक आदमी ने कीर्तन गया, वो क्या ठेला मारा, हाँ नंद जी का लाला अलबेला, हाँ मटकी में मार गए वो ठेला, इसमें क्या है? है कुछ? मटकू में मार गया ढेला, मटकू में एक घंटा लगा बस हो गया, और लोगों ने बस जो साधारण है बड़ा रस लिया, और साथ ही साथ में बस खत्म। इसलिए ऐसे लोगों के द्वारा जो कीर्तन है, पद हैं, उनमें कोई शक्ति संचरित नहीं होती है। जो गुरु, जो वैष्णव, जो साधन नहीं करता है, उसके नामों में भी शक्ति नहीं होती। इनको समझ करके हमको शुद्ध रूप में हरि नाम ग्रहण करने की चेष्टा। गुरु या साधु पथ का निर्देश कर सकता, चलना होगा हमें नहीं? महाप्रभु के साथ में स्वरूप दामोदर भी हैं, रूप गोस्वामी हैं। महाप्रभु जितना करने के लिए कहते हैं, रूप गोस्वामी उससे 10 गुण और अधिक कर रहे हैं कि नहीं? जितना करें उसे भी अधिक। उन्होंने यही कहा जो भक्ति ग्रंथ को लिख करके जगत में प्रचार, उन्होंने क्या किया? भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि, और ऐसे ऐसे अपने हृदय में से निकाल करके भावों को दिया, जिसकी कोई जगत में कल्पना नहीं कर सकता। महाप्रभु एक श्लोक कह रहे हैं और उसकी व्याख्या उन्होंने कर दी वहीं पर बैठे बैठे, और महाप्रभु को पता नहीं है, महाप्रभु जो व्यक्त कर सकते हो उससे भी अच्छे रूप में भाव प्राप्त कर। उनके साथ में काला कृष्ण दास था, हाँ ना, दक्षिण में गया काला कृष्ण दास, उसने क्या लिया? क्या लिया काला कृष्ण दास ने? वो भट्टाथारियों के दल में जाकर के, और उन्हें मिल गया, एक लड़की के प्रति आसक्त हो गया, उन्होंने लड़की को बड़ी सुंदर दिखला करके उसके साथ में कहते ये लड़की तुम्हें दे देंगे, और थोड़ा भारा लड़का उसमें फंस गया। महाप्रभु भिक्षा लेकर के जब आए तो देखा जी कहाँ गया, अरे वो तो चंगुल में फंस गया। गए वहाँ बीच में, वो तो मारो मारो मारो, सब लोग दौड़ने लगे, हजारों लोग, और उसमें से उसके चोटी को पकड़ करके अपने प्रभाव से स्तंभित करके वो तो ले आए। किंतु जब ले आए किसी तरह से पुरी में, तो पुरी में आकर के कहा जैसे ये अपना संभालो बेटा, और ये इसको घर भेज। उसको क्या हुआ? चलना किसको है? चलना तो हमें है ना। गुरु कहते हैं चातुर्मास से व्रत कर, यही तो कहेंगे, ये अपने आप कर करके दिखला देंगे। यदि कोई चातुर्मास से व्रत नहीं करता है और छिप करके सब काम करता है, दाढ़ी कमा लेता है अथवा कैसी से छांट लेता है, इसको भी छांट लेता है, अथवा एकदम मानता ही नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन ने नहीं मानता है, 1,00,000 नाम हरी नाम करने की बात वो भी नहीं पालन करता, गुरु क्या कर लेंगे? जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सके तो ये क्या कर लेंगे हम लोग? ये दोष किसका है? स्वामी जी ने लाखों लोगों को हरी नाम दिया, रास्ता बतलाए, और उसमें बड़े बड़े सन्यासी यदि गिर जाए तो ये स्वामी जी का दोष है? किसका दोष है? कुछ लोग आजकल कहते हैं स्वामी जी ने शिष्य किया, वो क्या जानते नहीं थे, उनके शिष्य कहते हैं, तो फिर उनको दिया और वो गिर गए, तो इसका मतलब है जो गुरु नहीं थे, उनको छोड़ करके।